बात है, जो प्रकट करने की बात है और जो वस्तु में ऑलरेडी है ही, उसको कहेंगे तो विकराल स्वभाव है हमारा, और उस स्वभाव का सन्मुखता से उसका आश्रय करना है, उसमें एकाग्र होने से पर्याय में वो धर्म प्रकट होता है। वो धर्म प्रकट करने का अन्य कोई भी तरीका नहीं है। जिसको ऐसी विकरालता होती है उसकी पर्याय में जो स्वभाव रूप जो योग बातें होती है क्रोध के अभाव रूप, क्योंकि हमें समझाना है तो वो कषायों के अभाव रूप की अपेक्षा उसको समझाया जाता है। और उपदेश की भाषा में ऐसा बताते हैं कि क्रोध मत करो, मान मत करो, माया मत करो, ये मत करो, ये उपदेश की भाषा है। परंतु नहीं करने से धर्म नहीं प्रकट होना, वो नहीं करने रूप जो है किसी के प्रति दया भाव जो है वो शुभ भाव है, और शुभ भाव करते करते धर्म प्रकट नहीं होता। परंतु जिसको आत्मा के सन्मुखता से जो विकरालता अंशित शुरू हो जाती है, उसके उस जाति का आनंदानुबंधी वाला क्रोध उत्पन्न नहीं होता। मुनिराज है तो उनके तीन कषाय का चौकड़ी का अभाव हुआ है, तो उनके आनंदानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान तीनों ही प्रकार के क्रोध उत्पन्न नहीं होते। वो उत्पन्न नहीं होते तो उन्होंने क्रोध का अभाव किया ऐसा कहते हैं। जो ऑलरेडी उत्पन्न हुआ है उसका क्या नाश करना, वो तो एक समय में स्वयं नष्ट हो जाता है, और जो अभी भविष्य का जो आया नहीं उसका क्या नाश करेंगे। तो ऐसे ही क्रोध की तरफ देखते देखते, पर्याय की तरफ देखते देखते कषायों का अभाव नहीं हो सकता। तो कषायों का अभाव करना है तो उसके लिए अस्थि स्वरूप जो हमारी जो विकराल स्वरूप अपना स्वभाव है, उस स्वभाव का लक्ष्य करने से, उसमें एकाग्र होने से पर्याय में जो नई पर्याय उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, तो आंशिक विकरालता लिए हुए हो जाएगी। और जितनी स्थिरता बढ़ेगी उतनी पर्याय में विकरालता बढ़ेगी, और पर्याय में उतना ही कषायों का अभाव होता चला जाएगा, इसको कहेंगे उसका नाश किया। परंतु यहाँ समझाने के लिए ये उत्तम क्षमा मार्दव आर्द्रव आदि जो चर्चा हो रही है, यहाँ तो हम जो शुभभाव रूप भी यहाँ, क्योंकि जीवों को उपदेश देना है तो वहाँ कहते हैं क्रोध मत करो, मान मत करो, ऐसा मत करो, ये ऐसा करो और ऐसा नहीं करो, ये जो भाषा है वो चरणानुयोग की भाषा है। चारों अनियोगों की भाषा जुदी जुदी होती है। द्रव्यानुयोग तो कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, उसके राग द्वेष रूप परिणाम हो या शुभ परिणाम हो या अशुभ हो या शुद्ध परिणाम हो, जीव अपने ही क्षेत्र में लिमिटेड है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बाहर उसका कुछ नहीं चलता है। न ऊपर को मार सकता है, न जिला सकता है, न कुछ। ये है द्रव्यानुयोग के सिद्धांत। वो सिद्धांत तो है ही है, परंतु जब किसी को उपदेश दिया जाता है चरणानुयोग में, क्या कैसा उपदेश दिया जाता है, ये आप भी जीव हो वो भी जीव है, तो आपके ऐसे दया के परिणाम रखो कि उसको आपके कारण कोई तकलीफ ना हो। आपके लिए एक बार तो कहते हैं आप उसको मार नहीं सकते, और यहाँ कहते कि ये सब सावधानी पूर्वक आपकी प्रवृत्ति रखना ताकि परजीवों की विराधना न हो, या ऐसे अटपटी बातें क्यों करते हो। तो कहते ये कथन अलग अलग टाइप का होता है। करना नियोग तो ऐसा कथन करेगा कहाँ कौन से जीव रहते हैं, कहाँ किसकी विराधना हो सकती है, तो उसका ज्ञान ही नहीं होगा तो उस हम हिंसा को टाल नहीं सकते, हम नहीं बच सकते, हमको उनको नहीं बचाना है। पाप परिणामों से अपने को बचाना है, दूसरे को तो क्या बचाएगा। तो यहाँ जो जैसे इधर उधर देखते देखते घसीट कर नीचे चल रहे और पार के नीचे रोन कर कितने ही जीव जंतु मर रहे हैं, तो कहते अगर अपना परिणाम सावधानी पूर्वक चलना है, सावधानी पूर्वक हम सभी प्रवृत्ति करते हैं, तो उसमें जीवों की विराधना, अभी जो बात आई थी ना कि जो मनुष्य पीड़ित पड़िया के जीव जो है कर्म भूमिंगे, तो इसे भले लंबी आयु लेकर आए हो परंतु उनका बीच में अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं ऐसे होने की संभावना है, तो उससे हमें बचना है कि हमारे कारण उन जीवों की हिंसा न हो। अभी वही तो बताया, सूक्ष्म जीव तो किसी के आधार से रहते ही नहीं, तो उनका होने का हमारे से उनके कोई हिंसा होने का सवाल ही नहीं है, पर हमें जिनको सावधानी से चलते इसलिए है कि अपने कारण इन जीवों की हिंसा न हो। तो ये जो ये चरणानियोग की भाषा है कि ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, करुणानियोग की भाषा में क्या कहते हैं, कहाँ क्या होता है, कितने जीव रहते हैं और वो कैसे कैसे उनकी क्या हालत हो सकती है, ये यहाँ बताया जाता है, वो सूक्ष्म वर्णन होता है। प्रथमानियोग की भाषा क्या होती है, हा वाली, राजा था एक रानी थी, वो राजा ऐसा था वैसा था, चक्रवर्ती हो गया, फिर उसने वो सब चक्रवर्ती पर छोड़ दिया, फिर वो मुनि स्वयं हो गया, फिर उन्होंने साधना करके मोक्ष का जो ऑलरेडी बीत चुका है उसको प्रथमानियोग में कथन होता है। वहां पर भी जीवों को उपदेश दिया जाता है, जैसे वो राजा जंगल में गया, उसको मुनिराज मिले, मुनिराज ने ये ऐसा ऐसा वर्णन किया। हम बच्चे थे मालूम है, तो घर में बहुत सारे हमारे ग्रंथ शास्त्र भंडार था, तो जो पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, अन्य भी कितने कितने थे, तो हम पढ़ना शुरू करते थे, जैसे स्टोरी चली आगे तो पढ़ते गए। जब मुनिराजों ने उपदेश कहना शुरू किया, पान पलट दिया, आगे चले, क्योंकि हमें इंग्लिश इसमें स्टोरी बोल रहे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे फिर आगे चले गए। तो ये प्रत्येक अनुयोग की कथन पद्धति जुदी जुदी है, परंतु सिद्धांतों में कहीं पर भी कोई विरोध नहीं है। चारों ही अनुयोगों को कथन जो है उसको हमें सुनना है, पढ़ना है, समझना है, और उसको समझ कर हमें वितरकता उसमें से कैसे निकालनी है, ये तो हमारी ट्रिक है ना, हमें हमारे ऊपर निर्भर है कि उसमें से कैसे वो हमारे लिए कार्यकारी है। यहाँ भी हम ये जो दशलक्षण धर्म जो है, दस दिन में हम एक एक धर्म का यानी एक एक लक्षण का यहाँ स्वरूप देख रहे हैं। तो आज का धर्म कौन सा है, आज कौन से दिन का धर्म है, वो सप्तमी, किसका है, सप्तमी का है, क्या आत्मा का है, आज ही के दिन करना है ना, केवल आज के दिन उसकी चर्चा करनी है। परंतु ये तो हमारा स्वभाव तो इस रूप तो है ही है, पर्याय में इसको कैसे प्रकट करे, इसलिए उपदेश में भी कुछ बातें बताती है। ये आर्जव शब्द कैसे तैयार हुआ मालूम है आपको, मालूम है आर्जव कैसे तैयार हुआ, कौन से शब्द से ये तैयार हुआ, जिसे मार्दव शब्द है वो कैसे तैयार होता है, मृदु से मार्द हुआ, तो आर्जव कैसे तैयार, कोई जानते हैं आप, रुजु शब्द सुना, रुजुता रुजु का अर्थ क्या होता है, सरल, रुजु से आर्जव, ये व्याकरण की बात है ना, संस्कृत शब्द की कैसे क्या ये हो जाए, जिसे शरीर शब्द से शारीरिक ऐसा शब्द तैयार, तो रुजु से आर्जव ऐसा शब्द तैयार होता है। तो आर्जव का अर्थ क्या है, सरलता, परिणामों की सरलता, इसको कहेंगे आर्जव। देखो हम यहाँ रत्नकरण शाहकाचार्य में भी आर्जव धर्म की चर्चा की है, उसके आधार से मैं कुछ, मेरे पास दो पुस्तकें, एक संयम प्रकाश है, ये मुनियों के द्वारा लिखा हुआ है, और एक है ये रत्नकरण शाहकाचार्य, ये भी किसकी रचना है, स्वर्णाचार्य। तो यहाँ उत्तम आर्जव के स्वरूप का वर्णन करते हैं, धर्म का जो श्रेष्ठ लक्षण आर्जव है, आर्जव का अर्थ है सरलता, मन की वचन की और काया की कुटिलता, कुटिलता यानी मायाचारी के परिणाम का अभाव वह आर्जव है। तो क्या शरीर की भी कुटिलता होती है, मन की भी कुटिलता होती है, वचन की भी कुटिलता होती है क्या, शरीर की कुटिलता क्या है, जैसे कोई के मायाचारी के परिणाम तो उनको दिख रहे हैं, तो फिर तो वो तो उसकी मायाचारी दिख रही है, परंतु वो इतने इसे एक्सपर्ट है, बाहर से तो अच्छे दिख रहे हैं और सीधी बात कर रहे हैं, आपको उपकार करते हुए दिख रहे हैं, परंतु उनके मन में जो कुटिलता है वो शरीर में नहीं दिख रही है, समझ में। और कोई तो शरीर की भी वो कुटिलता पाई जाती है, जैसे वो बकरियां कहते हैं, क्या कह रहे हैं, ऐसे पाए गए ऊपर के ऐसे वो बगुला जो है होता है वो खड़ा है, और वो किसके लिए, वो मछली पकड़ने के लिए होतेगा, वो कैसी है उसकी माया चाहिए। तो यहाँ कहते हैं मन की, वचन की और काया की कुटिलता का अभाव व आर्जो है। वचन में भी कुछ कहे और मन में कुछ है, अभिप्राय में कुछ अलग है और बातें तो ऐसी मीठी मीठी कर रहे हैं, परंतु उसके पीछे का अभिप्राय जुदा, ये भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना, कुटिलता का नहीं होना, उसको कहेंगे आर्जो। मायाचारी का नहीं होना, उसको कहेंगे आर्जो। तो आर्जव धर्म पाप का खंडन करने वाला और सुख उत्पन्न करने वाला है। अतः कुटिलता छोड़कर कर्म का क्षय करने वाला आर्जव धर्म धारण करो। ये करो वाली बात है, वो चरणानियों की भाषा होती है, यानी ये तो जो हमारे लौकिक आचार विचार बाह्य जो है उसमें भी सरलता के परिणाम अगर नहीं हो तो कहते जो वक्र परिणाम वाला हो, उसके लिए जो जिनेन्द्र की वाणी है वो उसमें घुसेगी नहीं, कितने भी कानों पर भी पड़े हैं, तो वो सरल हृदय वाला नहीं है तो उसके वो बातें कुछ असर नहीं करने वाली। तो आत्मा का हित चाहने वालों को, अपना कल्याण चाहने वालों को आर्जव धर्म का अवलंबन के लेना उचित है। जैसा मन में विचार करते हैं वैसा ही शब्दों द्वारा अन्य को कहना और वैसा ही बाह्य में शरीर द्वारा प्रवर्तन करना उसे सुख का संचय करने वाला आर्जव धर्म कहते हैं। यानी सरलता मन की संबंधी, वचन संबंधी और काय संबंधी। तो देखो ये मायाचार को शल्य भी कहते हैं, आपने नाम सुना है। तत्वा सूत्र में एक शल्य संबंधी एक सूत्र है, कौन बताना चाहते हैं? हाँ बोलो। नहीं हमें सूत्र सूत्र चाहिए। निश्चल्यो व्रति, व्रति उन्हीं को कहे कहेंगे हम कि जो निश्चल्य होते हैं। तो शल्य कौन से है, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सूत्र बोला, निश्चल्य व्रति। तो शल्य कौन से है अभी आप बताओ, शल्य कौन कौन से है? मिथ्या, माया और निदान, ये तीन शल्य है। जिसको ये तीन शल्य है वो उसको व्रति नहीं कह सकते, उसको संयमी नहीं कह सकते, उसको त्यागी नहीं कह सकते। आप कहेंगे क्या कह रहे हो, ये सब त्याग किया ना, संयम धारण किया ना। तो कहते हैं कि मिथ्यात्व मायाचारी है कुटिल परिणाम, और तीसरा कौन सा है, निदान। मिथ्यात्व तो समझते है ना, क्या मिथ्यात्व को क्या कहेंगे, अभी जितना आपने सीखा है उसके आधार से आपको बताना है। हाँ उल्टी मान्यता, ये है ये प्लास्टिक है और हमने इसको कांच कहा तो उल्टी मान्यता हुई कि नहीं। हाँ इसके बारे में प्रयोजनभूत सात तत्वों के बारे में उल्टी मान्यता, उसमें वो देवगुरु शास्त्र संबंधी उल्टी मान्यता वो सब आ गई उसके अंदर, क्योंकि सात तत्वों में देवगुरु शास्त्र को कैसे फिट करना वो बात आएगी उसके अंदर, वो अपना विषय नहीं है। तो ये मिथ्या तो हुआ, मायाचारी तो समझते अभी हम उसकी चर्चा चल रही, और तीसरी क्या बात बताई, निदान। निदान किसको कहना,
आगे की वांछा।
हाँ आगे की वांछा नहीं, वो विषय भोगों संबंधी आगे की वांछा उसको निदान कहेंगे। इंद्रिय संबंधी जो विषय भोग है, अभी देखो ये उपवास करती हूँ या ये करते है, क्यों कर रहे हैं, इतना पुण्य कर रहे हैं, पुण्य की रुचि है, क्यों, क्योंकि पुण्य के फल में संयोग अच्छे है। तो अच्छे संयोग के लोगों में ये जो करना कि मुझे ये मिल जावे, ऐसा भी कहते आज की ये सब हमने इतना पूजन किया क्यों, कि हमें कुछ विशेष बात प्राप्त हो जाए। तो ये जो आगामी संबंधी जो भोगों की इच्छा है वांछा है उसको निदान कहते, और उसके लिए लोग पुण्य के पीछे दौड़ते हैं। देखो हम तो दिगंबर संप्रदाय में जन्मे हैं, हमें मूल में ही सच्चा मार्ग मिला है, परंतु ऐसे कितने ही हमारे भाई बंध है जो जन्म से ही अन्य पक्षों में अन्य उसमें मान्यताओं में जन्मे हैं, और हमारे यहाँ स्पेशली जो श्वेतांबर है स्थानीय वासी है वो आते हैं, हमारे घर में भी बहुत सारे आते हैं। अभी हमारे यहाँ पंचायती का नियम साथ चल रहा है और उसमें दो महिलाएं आती हैं, एक साल से आ रही है, एक दो महीने से आ रही, दोनों ही श्वेतांबर हैं। और हम एक एक बातें बताते हैं तो प्रवचन सुनते सुनते होते हैं कि हम कितनी भूल भरी मान्यताओं से पीछे, हम भी एक कोई वर्षी तब कर रहा है, कोई अन्य कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और यहाँ तो सुनते हैं तो रोना आता है। वो जो बातें सुनते हैं तो हम इस मिथ्यात्व से कब बाहर आ जाएंगे, यानी ये तुम ने क्यों करते हैं, आप भगवान की इतनी सारी दर्शन पूजा क्यों करते हैं, आप ये उपवास आदि क्यों करते हैं, तो कहते हैं हाँ ये पुण्य के लिए करते हैं, तो पुण्य से क्या मिलेगा, तो पुण्य से अच्छे संयोग मिलेंगे, तो ये संयोग के लिए पुण्य कर रहे हैं और वो एक देखा देखी कर रहे हैं, उनको उपदेश भी वैसा ही मिल रहा है कि इस अभी पंचम काल में आप आत्मा का कुछ नहीं कर सकते, हाँ बस पुण्य करो। क्या करो, विदेश में हम गए थे शिकागो में, वो बात हुई थी, एक महिला घर गई थी तो उसके लड़के ने हमको पूछा कि लड़के ने वो भी आप जैसे इतनी उम्र का था, वो कहते मेरे कीड़ के लिए आप घर चलो, वो कीड़ देखा तो उसके हाथ में दो कीड़ थे, तो उसने पूछा कि हमें ऐसा यहाँ आते है क्योंकि वहाँ बहुत सारे श्वेतांबर की पंडित लोग जाते हैं, वहाँ उपदेश देते है, तो क्या सुना हमने कि इस काल में आप आत्मा का कुछ नहीं कर सकते, आप पुण्य करो, ये करो वो करो, तो क्या करो, दान दे दो, किसको दे दे, हम है ना हमारे, हमको दे दो। हमने बोला आप परदेव का कुछ कर ही नहीं सकते, आत्मा का ही सब कुछ कर सकते, क्योंकि भोले जीवों की ऐसी मान्यता है वो पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो, पर पुण्य से धर्म नहीं होने वाला, ये क्या है सारी मिथ्या मान्यता है, ये मिथ्यात्व है, तो मिथ्या को चालू रखे और कितने भी पुण्य करे तो उसका फल भी वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मिथ्या तो नाम का बड़ा पाप हो रहा है और इतना सा पुण्य हो रहा है उसके सामने, उसका क्या फल मिलेगा। दूसरी बात वो निदान की बात अभी हमने करती है, यदि पुण्य या जो कुछ क्रियाएं जो कुछ है वो क्रियाएं कर रहे, क्रिया भी पुण्य नहीं है, पुण्य का परिणाम जुदा है और वो जो संबंधी जो उसकी क्रिया है वो जुदी है। यहाँ तो पूजा तो हो रही है, पूजा में गा गा कर पूजा कर रहा है और परिणाम कहीं अन्यत्र लगे, सब लोग मुझे देख रहे कि नहीं देख रहे, इस पर यहाँ यहाँ से पूजा चल रही, तो वो क्या हो रहा है, समझ में आ गया, फल परिणामों का लगता है, फल क्रिया का नहीं लगता है, और हम एक दूसरे की क्रिया ही देखते हैं, और ये समय दृष्टि उसकी क्रिया क्या होगी, या ऐसा है उसकी क्रिया की बात नहीं है, जो जिस गुणस्थान में है उस भूमिका के अनुसार उसकी बाह्य क्रिया भी होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई कहता है ना हम घर में रहे और मुनि है, हम कपड़े पहने हैं और मुनि है, तो वो तीन काल में नहीं हो सकते, तो मुनि के अंतरंग जैसे उसकी इसको कहने अंतरंग में उसकी जो कषाई चोपड़ी की वितरकता है और फिर उसके शुभभाव रूप जो कुछ परिणाम है और उसकी जो बाह्य जो क्रियाएं है, ये तीनों का सुमेल होता है और उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। हमें मोक्ष मार्ग प्रकट करना है तो चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक के सभी का उस पूरे मोक्ष मार्ग और मोक्ष संबंधी जो स्वरूप है वो स्वरूप का जब तक निर्णय नहीं होगा तो चौथा गुणस्थान भी नहीं प्रगटेगा, धर्म की शुरुआत भी नहीं होगी, समय दर्शन भी नहीं होगा। हमें किसी अन्य जीवों को नहीं जांचना है, हमें तो वस्तु स्वरूप निश्चित करना है अपने मगज में अपने ज्ञान में, बाह्य कौन कहाँ है कौन सी गुणस्थान में वो क्या करता है या ऐसा करता है उसकी चर्चा नहीं है, हमें अपना कल्याण करना है, ये मनुष्य और इतना अल्प है और इतना मुश्किल से मिला है और वो दुनियादारी कौन क्या करता है उसको देखने में अगर हम लगाते हैं तो ये बर्बाद नहीं करना है, हमें अपना कल्याण करना है वो शीघ्र में शीघ्र करना है, दुनिया क्या कर रहे है समाज में क्या चल रहा है उसकी बात छोड़ दो क्योंकि वो करने लायक ही नहीं उसकी चर्चा, हमें तो अपना कल्याण शीघ्र में शीघ्र कैसा हो इस उद्देश्य से हमें यहाँ अभ्यास करना। तो यहाँ कहते हैं जो तीन शल्यों से रहित है वही प्रति होता है वही संयमी कहता है। कौन से तीन शल्य होते हैं अभी हमने मिथ्या को माया और निदान, अब यही बताते हैं। बहुत यानी अलग अलग पद्धति से उन्होंने बताया है। देखो यहाँ कहते हैं जिस प्रकार टेढ़े म्यान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करती, ये म्यान समझते हैं तलवार, आजकल के हमारे बच्चे नहीं समझते, या कोई बहुत कुछ नहीं थी, म्यान है जिसमें वो तलवार रखी जाती है उसका वो उसकी केस, वो टेढ़ी हो ऐसी और उसमें सीधी तलवार जानेगी कैसी जाएगी, नहीं जा सकती। ऐसे ही कपट से वक्र परिणामी के हृदय में जिनेन्द्र का आर्यरूप सरल धर्म प्रवेश नहीं करता। ये तो आपने शायद रामायण में बात सुनी होगी कि जो राम रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण का भाई जाके राम से मिला, कौन सा भाई, वो मिले कि हमें वो रावण की बात पसंद नहीं है और हम आपसे आपके साथ आना चाहते हैं, तो लक्ष्मण को वो पसंद नहीं था, अरे वो शत्रु का आदमी है, हम उसका तो भाई है, वो जरूर हमारे यहाँ हेरगिरी करने के लिए कोई कपट से मायाचारी से आना आया होगा, तो हम उसको यहाँ हम उनको स्थान नहीं देंगे, हम उनकी वो ऑफर स्वीकार नहीं करेंगे। तो विभीषण ने उसको उत्तर दिया, यदि मैं इसी मायाचारी करूँ तो मैं पंचम काल का मनुष्य होकर जन्मू, यदि इतने कुटिल परिणाम हो मेरे तो उसके फलस्वरूप मैं पंचम काल का मनुष्य होकर जन्म ले। उसका अर्थ क्या है, पंचम काल के मनुष्य कैसे हैं? ये वक्र परिणाम, ये 10 दिन अपना घर बार छोड़कर यहाँ क्यों आए हमको समझाने के लिए, कोई पंडित आते हैं ये क्यों हमको समझा रहे हैं, वो क्यों नहीं अपना कल्याण अपने घर में जाके बैठ के कर रहे हैं, दुनिया को समझाने के लिए यहाँ क्यों आ गए, इसमें इनका जरूर कोई अंदर अंदर हेतु होना चाहिए, होता है कि नहीं सर? कोई हम सरल परिणाम से किसी को मदद करे तो पहले समझता है इसमें इसका कुछ तो है कि नहीं हेतु, यानी वो सीधा कभी नहीं सोचेगा। अब यहाँ भी जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनते हैं तो उसमें सीधे हृदय से उसको स्वीकार नहीं होता, हाउ इज इट पॉसिबल, पहले क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, पहले ऐसा नहीं किया कि जिनेन्द्र भगवान ने बताया तो ये सत्य होना चाहिए, ऐसा कभी सरल हृदय से, तो यहाँ कोई है कि नहीं, कैसे हो सकता है कोई जीव होता है, हमारे साइंटिस्ट नहीं जानते, ये पृथ्वी हम अभी जो पृथ्वी पूछी तो पृथ्वी उसी को कहते जो लोकाकाश के एक एंड से दूसरे एंड तक पूरी की पूरी फैली उसको पृथ्वी कहते, वो हम जो पृथ्वी गोलाकार पृथ्वी उसके बाद यहाँ नहीं है, समझ में आती है ना, तो ये कैसे हो सकता है, हमारे साइंटिस्ट नहीं तो उसके फोटो भेजे ऐसा है वैसा है, वो बहुत बहस करने लगते, क्योंकि ये तो बात शांति से सुनते हैं, जब कोई वो तो त्रिलोक रचना की बात आती है तो अंदर से ऐसी खलबली मच जाती है कि, तो आपने इंद्रधनुष देखा कभी, देखा उसके फोटो भी निकाले कैसे उसका आकार पूरा ऐसा, तो हमने नक्की किया कि हम वो इंद्रधनुष को ढूंढने चले जाएंगे, जो कोई प्लेन रॉकेट है कुछ, तो आज तक कोई मनुष्य पहुंचा कि नहीं इंद्रधनुष पर, होता क्यों नहीं पहुंचा, कोई है साइंटिस्ट यहाँ पीछे, इंद्रधनुष नाम की चीज है ना, हम देखते हैं आंखों से देखते हैं, उसके फोटो आते हैं सब कुछ है, उसमें कितने 7 रंग होते हैं कैसे कलर होते हैं सब कुछ है, एक क्या उसके ऊपर आगे पीछे तो अनेक इंद्रधनुष भी हमने फोटो भी देखे हैं, तो ऐसी कोई रचना है कि नहीं वहाँ पिक्चर में, हाँ किसी पर्टिकुलर एंगल से उसका तो उसका साइंटिफिक रीजन है, तो किसी एंगल से वो जो प्रतिबिंबित जो किरणें हैं वो उसमें वो कलर की जो स्पेक्ट्रल इफेक्ट होता है तो वो हमको दिखाई देता है, ऐसी कोई वहाँ वस्तु नहीं है, समझ में आती है बात, ऐसे ही इस साइंस के द्वारा जो कोई फोटोज है जो कोई वीडियोस है जो कुछ है उसका एक्सप्लेनेशन है, परंतु हमें तो वो बात स्वीकार है, परंतु जो जिनेन्द्र भगवान ने बताया वो बात पर इतना मात्र हमें विश्वास नहीं है, फिर भी रोज यहाँ आकर घंटा डेढ़ घंटा तो पूजन कर रही है, किसकी पूजन करते जिस पर विश्वास नहीं, उसकी सर्वज्ञ कहते ही उसकी अगर सर्वज्ञता और वितरकता यहाँ भाषित हो जाए, उसका भाव भाषण हो जाए तो हमारा नामस्मरण को या उसका पूजन को वो तो कार्यकारी है, पहले में पहली कंडीशन उनका स्वरूप का निर्णय करना, सर्वज्ञता का निर्णय हो जाए तो यहाँ आत्मा का अनुभव हो जाए, ऐसी बात, इसलिए निर्णय केवल सब ज्ञान श्रद्धा में ही होना है, बाहर कुछ क्रिया किया नहीं किया उसकी बात नहीं है। हाँ, क्योंकि अन्य पापों से बचने के लिए सब जो अनुष्ठान क्रियाएं सब उसका उपदेश भी होता है, हम करते भी है, बच्चों को भी सिखाते हैं, परंतु वो तो ऊपरी बात है, मूल बात तक हमको पहुंचना है और वो बहुत कार्यकारी, उसी से कल्याण होगा। केवल शुभभाव रूप क्षमा, शुभभाव रूप कुछ भी है, शुभभाव रूप जो कुछ लोगों से सदाचार से रहना, उससे मनुष्य भव की सफलता नहीं है। वो मत करो ऐसा यहाँ उपदेश नहीं है, वो तो होना ही चाहिए। इतनी सरलता, इतनी मंद कषाय के बिना जिनवाणी सुनने के लिए पात्र भी नहीं है, क्योंकि जो तीव्र मिथ्या दृष्टि, तीव्र मोह है, तीव्र शरीर आदि में उसके अपनत्व पड़ा है, राग द्वेष है, उसको अगर जिनवाणी सुनने जाओ तो भड़क उठता है। नहीं मालूम आपको, महिलाओं को तो मालूम है, हम तेल उबालने को रखते है, भजिया बनाने वाला जो पूरी जो कुछ तलने के लिए तेल रखते, तो तेल अभी बहुत गर्म हुआ, उबलने लगा, तो क्या करते हैं, थोड़ा कम गर्म था चाहिए था, ज्यादा उबल गया तो क्या करते, थोड़ा पानी डालते ठंडा करने के लिए। नहीं? क्या करते बेटा बोलो, क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, यानी उसमें छींटे डालेंगे पानी के तो क्या होगा, अरे बड़केगा, आग लग जाएगी, पानी डालेंगे तो आग लगेगी, और उसमें वो पकौड़ा वड़ा डालो तो क्या होगा, तल के ऊपर आ जाएगा मजे से। ऐसे ही जो तीव्र कषाय, तीव्र मिथ्या दृष्टि और विषयों की जो रूपी जीव है, उनको उन्हीं के कल्याण की जिनवाणी सुनाने जाओ तो अंदर से तीव्र भड़का हो जाता, आप बोगुला हो जाते और आपके साधन में भी विघ्न कर सकते। शास्त्र में तो ऐसा ना, दान की पात्रता को देखकर दिया जाता है, तो ये जो जिनवाणी का जो दान, यानी उसके जो सिखाना है, उसके आत्म कल्याण की बातें, अति तीव्र मिथ्या दृष्टि को उसको भी लायक जीवों को ही उपदेश दे दिया जाता है, सामने वाला पात्र जीव देखकर। और वो ऐसा जो तीव्र वाला है वो यहाँ आके सुनने को आया भी नहीं, आएगा भी नहीं है, वो तो अपने बला ऐसे भी डर जाती है इसे कुछ, क्योंकि जो इच्छुक है जानने का, जो कोई जिज्ञासु है वही जीव आएगा यहाँ। तो उसके लिए कहते हैं जो सरल परिणामी है, देखो ऐसा भी होता है, ये जो आगम का वचन है कि सर्व आगम धर भले पण जान तो नहीं आता, यानी पूरे उसने सारे आगम सारे शास्त्रों का अभ्यास किया है, बढ़ 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 बोलता है, यहाँ इस गाथा में ये लिखा है, वहां उस पुस्तक में वो लिखा है, वही लिखा है, वो लिखा है, उसको लिखा है, और फिर भी उसको समय दर्शन नहीं हुआ है। और कोई ऐसा है, यह तो शास्त्र का वचन है कि 8 वर्ष का मनुष्य पर्याय में 8 वर्ष का जो बालक हो या बालिका हो वो समय दर्शन प्राप्त कर सके। क्या है सरल, जैसे तत्वों का स्वरूप 7 तत्वों का स्वरूप बताया, जैसे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप बताया, जैसे स्वर वेद विज्ञान का स्वरूप बताया, बिल्कुल सरल हृदय से, बिल्कुल ऐसा ही है सर्वज्ञ ने बताया, ऐसा एक्सेप्ट कर देते है और आत्मसमुपरणाम में उनको भी समय दर्शन हो जाते, इतनी सरल स्वाधीन बात। अरे जो तीर्यंच कर सकते, एक दो नहीं असंख्यात तीर्यंचों ने, तीर्यंच अभी वर्तमान में प्रत्येक नरक में असंख्यात जीव है जिन्होंने वहां जाकर समय दर्शन प्राप्त किया, इतनी प्रतिकूलता में, इतनी वहां जो यानी जो बाह्य भी वातावरण की भी प्रतिकूलता है, शारीरिक अनेक रोगों की प्रतिकूलता है, वहां एक दूसरे के प्रति नफरत है, वहां ऐसे नरकों में भी असंख्यात जीव वहां समय दर्शन प्राप्त किए हुए है, वहां तीर्यंचों में भी है, और यहाँ मनुष्य है, यहाँ शास्त्राभ्यास की मुख्यता है, इतना सरल करके जो कि वचन की जो प्रवृत्ति है, जो अक्षरात्मक जो है शास्त्राभ्यास की जहाँ है, तो यहाँ मनुष्य पर्याय में ही इतना सुलभता से प्राप्त, ऐसा अन्य पर्याय में नहीं। आप कहीं देवों के तो डायरेक्ट जा सकते ना, परंतु देवों में इतनी जो विषयों की जो अधिकता है, वहाँ सहज उपलब्धि है, तो उसी में जीव रचा पचा रहता है। तो ये मनुष्य पर्याय ही ऐसी पर्याय जो अत्यंत दुर्लभ है, और उसमें भी ये सब मार्ग मिलना उत्तरोत्तर दुर्लभ है, और ऐसी सरल बात और हमें हम तक पहुंची है, तो अगर हम इसका अगर ये अवसर खो देते हैं तो फिर ऐसा अवसर आना मुश्किल। अभी जीव समासों की जब बात देखेंगे आप, तो उसमें कौन सी पर्याय कितनी मुश्किल से कब मिलती है, उसमें कितने काल तक रह सकता है एक जीव लगातार, इस सबकी बातें आएगी, तब ये एहसास होगा कि हम अभी यहाँ मनुष्य में आए हैं, तो हम अनंत काल में कितना मुश्किल से मुश्किल अवसर हमको मिला, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं अनादिकाल अनादिकाल कहते, पर वो अनादि क्या वस्तु है और कितना अनंत 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 काल हम गीता के यहाँ आए हैं, क्योंकि हम जो मनुष्य हुए हैं तो ये हम मनुष्य हैं कहकर उसी में हम इतने रचे बचे हैं कि हमें वो जो पूर्व जो बीत गया उसकी तो याद तो है नहीं, बस इस पर्याय जितना ही हम मानकर चल रहे हैं। परंतु यदि उसका एहसास हो जाए तो जीव कांप उठता है और फिर वो सचमुच इसके प्रति सीरियसली ये मन में लेता है कि नहीं ये मुझे करना है। ये करने के लिए कोई आपकी लौकिक प्रवृत्ति छोड़ने की बात नहीं है, ये जो हम स्वाध्याय में जो सिद्धांत सीखते हैं उसका वो एप्लीकेशन मन में हर कार्य में लगता है। ये जरूरी नहीं कि वो सब व्यापार धंधा छोड़ा घर में बैठ गए, ऐसी बात नहीं है। ये बात हर समय चल रही चलती है, वो आता है ना पूजा में ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महामदना। ये तो सुनेंगे हम एक घंटा और फिर वो बात चलेगी अपने मन ही मन। आवाज कोई बात नहीं, यहाँ लिखते हैं देखो रत्नकरण शाहचार्य में, कपटी के दोनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ये दो लोक क्या है, हमने तो एक ही लोक सुना था, एक लोकाकाश एक अलोकाकाश, तो कपटी के दो लोक यानी लोकाकाश और अलोकाकाश नष्ट होता है क्या, मेरा प्रश्न है। दो लोक का अर्थ क्या है, पीछे वाले भाई कोई बताए, लास्ट वाले एकदम छोटे छोटों को तो सामने आके यहाँ यंगस्टर्स को बताए बस बैठना चाहिए, बोलो बेटा लास्ट एकदम। दोनों लोक का अर्थ क्या है, हाँ अभी को पूछ रही हूँ मैं, नहीं मालूम आप सामने आओ या फिर जिनके पीछे बैठो आओ। देखो ऐसा मत समझना कि हम कुछ नहीं जानते, हम नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे तो बहुत अच्छी बात है, सुनना ही चाहिए। देखो आपने सुना है इहलोक और परलोक, आप कौन से मीडियम वाले हैं, मराठी मीडियम अंग्रेजी मीडियम इंग्लिश मीडियम, अच्छा अब सुनो, इहलोक है ना दिस वर्ल्ड एंड परलोक यानी आफ्टर डेथ, समझ गए बात। तो इहलोक यानी इस लोक और परलोक यानी मरने के बाद जो हम अन्य भाव में जाते हैं उसको कहेंगे परलोक। तो यहाँ क्या लिखा देखो, कपटी, कपटी समझे मायाचारी, मायाचारी समझते हो, हाँ क्या कहेंगे उसको, कनिक तो यानी अंग्रेजी लोग भी कनिक हो सकते हैं। किसी देश या भाषा में कहीं पर जाओ, देव हो नारकी हो मनुष्य हो दिव्यंश हो क्रोध मान माया लो आदि जो हमने जो सब 25 गिने हैं सबके पाए जाते। ऐसा नहीं कि देव है वो खाली लोभी है और मनुष्य सारे केवल माननी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक कोई भी कषाय अंतर्मुख से अंतर्मुख में बहुत छोटा काल है, अंतर्मुख अंतर्मुख में पलटते ही नियम से, किसी को हमने क्रोधी लेबल लगा दिया, किसी को माया भी, और वो लेबल भले लगा लो उसकी मुख्यता से हम कहते भी है, परंतु वो क्रोध मान माया लो अल्टरनेटली चलते ही चलते हैं हर जीव के। और उसका नियम है क्रोध करो तो भी बंद भी हो रही ना, यहाँ जीव करता है क्रोध मान माया लो और यहाँ नए बंद भी आठों कर्मों का होता रहता है, परंतु उसमें भी जो नए क्रोध मान माया लो ये परमाणु फिर बंधेंगे। तो यहाँ क्रोध करने वाले को भी क्रोध मान माया लोग सारे बनते, मान करने वाले को भी क्रोध बन उदय ने करता तो एक कषाय पर बनते हैं चारों कषाय संबंधी परमाणु, ये मालूम ही नहीं हम क्या कर रहे हैं क्या हो रहा है,
खाली क्रोध छोड़ो का
उपदेश आता है और मान माया लोग पर चले क्रोध मत, ऐसा होता है ना, क्रोध करो मान करो माया करो लोभ करो चारों ही के बंध का हर समय बंध हो रहा है। तो हमें तो अभी उसमें से छुटकारा कैसा क्या करना वो सारा यही है अपना जो विषय है उसको अभी हम कह रहे कि कपटी के यानी मायाचारी जीव के दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं, यानी यह लोग यानी अभी इस प्रेजेंस में भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते तो मायाचारी है कपटी है, उसको तो लोगों को मालूम है उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। यदि यश चाहते हो धर्म चाहते हो प्रतीति चाहते हो, प्रतीति यानी समय दर्शन चाहते हो तो मायाचार का त्याग करके आर्जव धर्म धारण करो। तो धर्म धारण करो यानी वितराग का धारण करो, वितराग का धारण करो यानी अपना स्वभाव पहचानो और इन कषायों से मैं रहित हूँ ऐसे उसकी प्रतीति में लेना। पर्याय में है उबलते पानी के समय पानी का स्वभाव शीतल है ऐसा प्रकृति में लेना है, वो आचरण में उसमें हाथ डुबोने के नहीं कह रहे हैं, शीतल है उबलते पानी में हाथ डालो ये नहीं कह रहे, परंतु उस समय भी उसका स्वभाव नष्ट नहीं हुआ है, उस स्वभाव को हमको अपने ज्ञान में बुद्धि में लेना है। यही तरीका है धर्म प्रकट करने का। अभी हमारे पर्याय में मोरा द्वेष के परिणाम है, मायाचारी के क्रोध के मान के सब परिणाम है, जिसके जितने मंद या तीव्र हो उतने, तो मंद करने की बात वहां तक समाधान है, हम उनसे जुदे है, हम तो ज्ञान स्वरूप है, इस तरह से हमको विचार मिले। ये तरीका है धर्म प्रकट करने का। केवल हमने थोड़ा पाप कम बहुत तीव्र कषाई थे, यानी तीव्र क्रोध मान माया करते थे, अभी थोड़े मंद हो गए, लोगों को भी शांति मिली और ये सदाचारी बहुत भला है ऐसा कहते हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा, ये तो एक शुभ भाव है। हाँ, कर्मों के बंध में थोड़ा इधर उधर, परंतु वो भी अल्टरनेटली होते ही रहते हैं। मंद 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 अभी बैठे यहाँ तो सारे मंद कषाय, सारे हमारे घर के काम उत्सवित करके बैठे हम, यहाँ से जाते ही कैसे एकदम गाड़ी छूटती है। जैसे वो होते ना कर्मों में गुदी ना होती है, फटाफट फटाफट ऊपर के उदय में आए लगते हैं, वो हमारे सारे भी काम घर के पड़े हैं ना, अभी दबा के रखे हैं हम, अभी यहाँ जाते हैं ऐसे। यहाँ पुरुषों की कुछ अलग हो गए, नौकरी धंधे संबंधी हो गए, महिलाओं की कुछ अलग हो गए, परंतु होते ही नहीं हिसाब होते। तो हमने कषायों को अभी किया दशरथ अंदर में, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, दबा के रखे तो बाद में कैसा होता है देखो, लोग कहते भी है, ये सुनते हैं तो बहुत शांत रहते हैं, यहाँ से नीचे उतरते हैं बाहर जाते हैं तो हमारी वो बात चालू हो जाती है। परंतु जब बारंबार स्वाध्याय करेंगे तो इसके विचार भी चलेंगे हमारे में, खाली सुनना बेकार नहीं है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन मन ही मन में चलता रहता है, चलना भी चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कपट रहित की बैरी भी प्रशंसा करते हैं, और कपट रहित सरल चित्त वाले ने यदि कोई अपराध भी किया हो तो भी वह दंड लेने योग्य नहीं है। जो धन संपदा, संपदा ने संपत्ति कुटुंब आदि को अपनाता है वही कपट छल ठगाई करता है, यानी जो ये धन से या अन्य चीजों से मैं बड़ा हो जाऊंगा, उससे मेरी महत्ता हो जाएगी, मेरी इज्जत बढ़ेगी, मैं कुछ ग्रेट कहलाऊंगा, महान बन जाऊंगा, तो वो धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए कितनी कुछ भी मायाचारी कर सकते। तो जिसको उसके प्रति तीव्र आसक्ति है उसके लिए तो मायाचारी चलेगी ही चलेगी। तो कहते जो आत्मा को संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर, संसार परिभ्रमण यानी जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, इससे छुड़ाकर परद्रव्यों से अपने को भिन्न असहाय जानता है, असहाय ने स्वसहाय, गरीब बेचारा वो असहाय नहीं, हाँ, वह धन जीवन के लिए कपट नहीं करता, धन संपत्ति के लिए वो कपट नहीं करता, क्योंकि उससे मैं महान नहीं हूँ, मैं मेरे में अपने से ही महान चीज हूँ। कल हमने बात देखी ना, आश्चर्यकारी अनुपम ऐसी चीज मैं स्वयं हूँ, और ये धन संपत्ति मेरे से जुड़े ही है, वो मेरे नहीं है, भले मेरे संयोग में है पर उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, और उनके कारण मैं महान नहीं हूँ, मैं अपने से महान हूँ, ऐसी जब यहाँ हमें अनुभूति हुई तो क्या बात है। उसके पहले भी तत्व विचार में भी जब हम ये लेते हैं और इसका विश्वास करते हैं तो बिल्कुल हमारा जीवन पलट जाता है। कितने ही लोग हम अपने अनुभव से कहते हैं कि जब तक इस तत्व ज्ञान के संपर्क में हम नहीं आए थे तो बहुत लौकिक में तो बहुत एजुकेटेड है, दो दो तीन तीन डिग्री है, गोल्ड मेडलिस्ट है, और ये है और इतना प्रैक्टिस है, लोग मानते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं, जब ये सुना तो कहते हम जीरो हैं। जब तक ये नहीं समझा तो हम ये लौकिक जो हमारे कुछ जिसको कहीं लौकिक उपलब्धियां है उसी से हम कुछ बड़े हो गए अच्छे हो गए ऐसा मानते हैं, और उसमें सुखी सुखी है, कोई गुजराती को पूछो केम छो सुखी छिए, क्या है उसकी लिस्ट आती है पूरी, इतने करोड़ की हमारी प्रॉपर्टी है, कई में प्रॉपर्टी की वैल्यू बताएगा, और फिर इतने बच्चे हैं वो क्या करते हैं क्या कमाते हैं, वो सब हमें सुखी छिए, तो ठीक छो बाकी ठीक है, नहीं पिताजी बहुत बीमार है, वो अभी एक आंखों से नहीं दिखता है, एक बेटे की बहू भाग गई है, दूसरे की पूरी उसकी वो लिस्ट शुरू हो जाए। पहले सुखी चाहिए करके वो धन संपत्ति बताता है और फिर उसके एक एक दुख की लिस्ट चालू हो जाती है। यानी इसके कारण हम ग्रेट नहीं है कि जिसके पीछे हम पूरी हमारा उपयोग है, हमारी बुद्धि और हमारा समय किसके पीछे हम लगा रहे हो, दिन का कितना समय हम किसके लिए देते हैं, अपने लिए कितना देते हैं और धन संपत्ति के लिए कितना देते हैं। जब हमने एक स्कूल की एक हमको डिग्री, भले वो मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, कितनी, उसके लिए हमने आपका जीवन का कितना योगदान किया। पहले कुछ नहीं समझते थे तो माँ बाप ने स्कूल में डाल दिया, रोते हुए भी बिल्कुल उसको वहां छोड़कर, बिगड़ते हुए बच्चे को छोड़कर घर आए, कितनी निष्ठुर माता है, पर वो बच्चे की भलाई के लिए उस वहां डाला। फिर हम स्कूल गए, दसवीं तक पढ़े, फिर कॉलेज में पढ़े, फिर और इतना किया उतना किया, हाँ इतनी डिग्री मिल गई और हमें मोक्ष जैसा उत्कृष्ट कार्य कहते तो हमारा प्रयोजन सुखी होना, मोक्ष प्राप्त करना है। और उसके लिए जो बेसिक जो तत्वों का अभ्यास है उसके लिए हम कितना समय दे पाते हैं, साल भर में 10 दिन, वो 10 दिन का आधा या 1 घंटा कितना दे पाते हैं ना। और वहां स्कूल में हमने क्या क्या किया, स्कूल में भी पढ़ते थे, होमवर्क भी करते थे, रट के वो परीक्षा भी देते थे, है ना। और जब जाके एक हमको एक पेपर मिला सर्टिफिकेट वाला, वो जो पैसे कमाने के लिए वो कार्यकारी नहीं हुआ, तो उसके लिए हमने कितनी मेहनत की, कितना सब होकर अभी हम कितने सुखी हुए, उसका भी हमको विचार करना चाहिए। तो ये सच्चा सुख अगर चाहिए हो तो पहले अपना स्वरूप निश्चित करना है। हाँ, उसके लिए कुछ पारिभाषिक शब्द है, कुछ यहाँ हम बातें बता रहे हैं, उसके अभ्यास से करना तो हमें अपने को, वो अपने में ही है और स्वाधीन है, सहज है, सरल है, इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता। तो ये सरल में सरल स्वाधीन धर्म हम अपने में प्रकट करें, इसी भावना से हम यहाँ रोकते हैं। बोलो 2400 भगवान। ये शाम को मैं फरवरी के शिविर के जरा अनाउंसमेंट करना है, अभी जो आए उनको बता देते हैं। फरवरी 11 से 11, 12, 13, 14, 15 देवला जी में शिविर होने जाने वाले हैं। विषय बाकी एडवांस विषय